ओम शांति। आज की मुरली सभी के कानों में गूंजती होगी। सीमा बहन, प्रताप भाई, बोलो क्या था? कर्मेंद्रिय जीत और कर्मातीत। हम सभी को कर्मातीत होना है। कर्मातीत होने से पहले एक शब्द हम यूज करेंगे, विकर्मातीत। ठीक है, विकर्मों से पार। एक बाबा की डेफिनेशन याद रखेंगे, कर्मातीत माना कर्म के प्रभाव से परे। सुंदर बात ये, लेकिन इससे भी गहरी, कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी परे। कर्मातीत होने के लिए हमें योग बल की बहुत आवश्यकता है, ताकि सारे विकर्म नष्ट हो जाएं, हमें भोगने न पड़े, क्योंकि विकर्मों को भोगना बहुत भारी है या नहीं? जब विकर्मों का भोग होता है तो योग भी समाप्त हो जाता है और पीड़ाएं भी बहुत होती हैं। हमें ध्यान देना है एक विशेष बात पर, आज हम सभी अटेंशन देंगे। बाबा ने अपनी मुरली में लगभग 1977 ये बहुत गहरी बात कही कि 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने में तुम्हें समय नहीं लगता। ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विकर्म होते हैं उसमें बहुत समय लगता है। तो हम योग अभ्यास से अपने पुराने विकर्मों के खाते को भी नष्ट करेंगे और साथ साथ ये ध्यान देंगे कि ब्राह्मण जीवन में सूक्ष्म विकर्म न हो, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होते हैं, 100 गुना हो जाते हैं। और वो ऐसे विकर्म हैं जिनका आम व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। एक व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कारों के कारण सेवाओं में विघ्न बना हुआ है, बहुत बड़ा विकर्म का खाता बनता रहता है, उसे पता नहीं चलेगा। इसलिए सेवाओं में टकराव में आने से सूक्ष्म बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। ध्यान दें आप, कोई आत्मा बाबा के पास आई, सुख शांति के लिए आई है, खुशी प्रेम के लिए आई है, समस्याएं लेकर आई थी, बिल्कुल हल हो जाए, हम रिलैक्स हो जाएं, इसके लिए आई है, और किसी के दुर्व्यवहार से वो डिस्टर्ब हो जाएं, उन्हें यहां भी भारी लगने लगे, वो रोने लगे कि आए थे किस लिए और क्या हो गया, कैसी निमित्त बनने वाली आत्मा का बोझ बहुत भारी हो जाता है। ये मैंने 2 आपको उदाहरण दिए, 100 उदाहरण हो सकते हैं। यज्ञ के नियमों के विरुद्ध चलने से, मान लो हम सवेरे सो जाते हैं और हम सोते हैं, और हमें देखकर कमरे वाले 4 लोग और सोते हैं कि ये भी तो नहीं उठते, हम क्या उठें, तो इसका सूक्ष्म बोझ उस आत्मा पर आ जाता है। आजकल की नई माया, कोई आत्मा 12-1-2 बजे तक लैपटॉप और मोबाइल पे लगी रहे, उससे यज्ञ कमजोर हो जाता है। होता है या नहीं? सब समझते हैं, मुझे उसका डिटेल करने की जरूरत नहीं। कई लोग फिर सवेरे उठेंगे नहीं, वो भी नहीं उठेंगे, वो कमजोर रह जाएंगे, उनमें इम्प्योरिटी जागृत होगी, उसके वाइब्रेशन से ये महान यज्ञ निर्बल पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारे बोल सुखदाई हों। जिस लक्ष्य से बाबा यज्ञ में, बाबा के पास यज्ञ में कोई भी आत्मा आती है, उसको लक्ष्य प्राप्त कराने में हमारी मदद मिल जाए, ये बहुत बड़ा पुण्य। मान लो कोई दुखी आया, हमने उसको चार अच्छी बातें सुनाकर हल्का कर दिया, बहुत बड़ा पुण्य। पुण्यों का खाता भी बहुत बड़ा है और हम सभी को बहुत सुंदर अवसर है बहुत पुण्य जमा करने के। हम बहुत अच्छा यज्ञ में माहौल बना दें, प्रेम का, शांति का, योग का, जो भी आत्मा यहाँ आए तृप्त हो जाए, तो वो पुण्य हमारे खाते में जाता रहेगा। एक बार बहुत अच्छी बात सूक्ष्म बाबा ने कही थी, आप में से किसी ने सुनी हो, बहुत पुरानी है, कि ब्रह्मा बाप, शिव बाबा ने कहा था, ब्रह्मा बाप, उन्होंने पुरुषार्थ भी सर्वश्रेष्ठ किया और अब भी वो सब आत्माओं को ऊपर से बहुत मदद करते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर, उनके जीवन से कुछ सीखकर, किसी के भी पुरुषार्थ में जो वृद्धि होती है, उन्नति होती है, उसका शेयर ब्रह्मा को चला जाता है। बहुत हमें बड़ा मजा आया था सुन के। तो इससे बाबा हमें सिखा रहे थे कि तुम भी ऐसे करो। हम सब जो यज्ञ निवासी हैं, हमें देखने वाले भी तो लाखों हैं ना, इसलिए हमें देखकर कोई हल्का हो जाए, हमें देखकर किसी की टेंशन दूर हो जाए, हमें देखकर किसी के पुरुषार्थ में उमंग उत्साह आ जाए, ये पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। तो हम सब शेयर होल्डर हैं, ठीक है, बहुत कमाई होती है सबको नायब भाई, बहुत कमाई होती है, अपना त्याग करके भी दूसरों को सुख देते रहें, सहन करके भी दूसरों की भलाई करते रहें, मेहनत करके भी दूसरों के काम आते रहें, तो हमारा मार्ग सरल हो जाएगा, क्योंकि दूसरों का पुण्य, वो हमारे पुण्यों के कारण दूसरों की दुआएं हमारे लिए बहुत बड़ा बल होता है। तो सभी इन दोनों चीजों पर ध्यान देंगे, सूक्ष्म पाप भी हमसे न हो और हमारा पुण्यों का खाता बढ़ता चले। हम सभी यज्ञ निवासियों को पुण्य करने का सबसे ज्यादा अवसर मिलता है, हजारों लोग हमारे पास रहते हैं, उन सबको हम कुछ दें। एक देने की छोटी सी विधि का अभ्यास करेंगे सभी। अभी नॉन बी के बहुत आ रहे हैं शिविरों में, हजारों हजारों आ रहे हैं, किसी भी एक स्वमान में रहकर यदि हम उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो उसी तरह के वाइब्रेशन सबको जाते रहेंगे। आप अपने कमरे में बैठे हैं, 5 मिनट के लिए अभ्यास कर लें केवल, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, या मैं पीस हाउस हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, और पूरे शांति वन को विजुअलाइज करें, हजारों भाई बहने जो देवकुल की आत्माएं थी यहाँ आई हैं, आत्माएं आई हैं हजारों, तो हमारे वो प्योर वाइब्रेशंस उन सबको जाते रहेंगे। ऐसा 2 बार भी कर दिया जाए सारे दिन में, तो घर बैठे बिना कुछ खर्च किए हमारे पुण्यों का खाता बहुत बढ़ेगा। पसंद है महेश बाबू, भोलानाथ पसंद है, सबको करना है ये काम, तो बहुत बड़ी सेवा होती रहेगी। ये हमें कर्मातीत होना है, कर्मेंद्रियों को भी जीतना है। आज हमारी क्लास में एक चर्चा हो रही थी ऊपर ज्ञान सरोवर में, कि और कर्मेंद्रियों की बात तो बाबा करते ही आंखों की, पर जीभ भी तो कम नहीं है, है या नहीं? जिसने इस रस को जीत लिया उनके लिए कॉमन बात है, और जिसने जिव्या के रस को नहीं जीता उसके लिए वही एक बहुत बड़ी समस्या है। डायबिटीज भी हो गई है बहुत ज्यादा, लेकिन माल बहुत अच्छा रखा है आगे, अब कंट्रोल होता नहीं, चलो देखा जाएगा जो होगा, अब तो खा लें हैं, समोसे बहुत अच्छे खुशबूदार हैं, खुशबू फैल रही है चारों ओर, ठीक है गड़बड़ होगी, एसिडिटी होगी, पेट भारी होगा, अब तो खा लें देखा जाएगा, इंजेक्शन लेंगे, बहुत अच्छे लेग्जेटिव्स मिलते हैं पेट के लिए, डाइजेस्टिव चीजें हैं, हलवा हलवे की खुशबू ही बहुत अच्छी होती है, तो अभी तो खा लेने दो, फिर देख लेंगे जाके, घर जाके परहेज कर लेंगे। हाँ, तो जीभ के रस को कंट्रोल करना, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? चाहे वो आंखों का रस हो, कानों का रस भी काफी खतरनाक है, निंदा रस, निंदा सुनने में सुनाने में जो रस मिलता है वो कभी कभी योग से भी ज्यादा दिखाई देता है, होता है या नहीं? उसमें घंटों का समय मिल जाता है और योग के लिए समय नहीं बचता। कुछ अच्छा चिंतन करेंगे अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ करने के लिए, कर्मेंद्रियों पर शासन करने के लिए हमें एकांत में कुछ अच्छा चिंतन करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए एकांत बहुत आवश्यक है, जिसमें हम अपने से बातें कर सकें, अपने को देख सकें। देखो कर्म जीभ के रस से बहुतों को शारीरिक कष्ट बहुत हो रहे हैं, जीभ का रस है वो बताने की बात नहीं, पर मैं बहुतों को जानता हूं, उन्होंने बहुत हैवी भोजन खाया है, पकोड़े भी, क्या है ये, ब्रेड के, उसमें अंदर चटनियां भर के, अब ब्रेड के पकोड़े जब बनेंगे तो सारा का सारा तेल ब्रेड में चला जाएगा ना, या ब्रेड तेल नहीं लेगी, सारा चूस लेती है, बहुत हैवी हो जाता है, और दिल भर के खा लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत नहीं, इसलिए थोड़ा सा अपनी डाइट पर सभी ध्यान देंगे, न केवल इसलिए कि कर्मेंद्रियों के रसों को जीतना है, बल्कि इसलिए भी कि हमें स्वस्थ रहना है, हमें सेवाएं करनी है बाबा के पास, हमें बहुत हेल्दी रहना है और इस लाइफ को एंजॉय करना है। तो भोजन, हमारे यहां तो खैर भोजन है ही बहुत अच्छा, पर कोई कोई पर्सनल भी बना लेते हैं हैवी भोजन, उससे जरा बचना है। पनीर कईयों को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है पनीर, खाना भी चाहिए, पर कितना, थोड़ा सा कंट्रोल से, कई कई लोग तो खाते भी हैं और फ्रिज में भी रख लेते हैं, उसे बचना चाहिए जरा। तो लाइट भोजन हमारी स्थिति को लाइट रखेगा, बॉडी को लाइट रखेगा, हेल्दी रखेगा, और हर एक को स्वयं देख लेना चाहिए कि क्या खाने से हमें नुकसान होता है, कौन सी चीज हमें भारी करती है। क्योंकि आज मेरे पास क्वेश्चन आया है एक कि कई लोग अमृत वेले सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कब सो गए, जब सफेद लाइट होती है तब आंख खुलती है कि पूरा हो गया योग, चलो वापस। तो हैवी भोजन सुला देता है, इसलिए अपनी अपनी आयु के अनुसार, आयु को भी इससे जोड़ देना है, जिनके आयु 60 साल के ज्यादा हो गई है वो रात के भोजन को आधा कर दें, जल्दी भी थोड़ा, और जो यंग हैं वो खाएं अच्छी तरह, कम से कम 1/4 कम कर दें, और जो बीमार रहते हैं वो भी आधा कर दें। अनेक चीजें भोजन के द्वारा ठीक की जा सकती हैं बॉडी की, जहां भोजन में एनर्जी बहुत है वहीं इसका ज्यादा सेवन शरीर की एनर्जी को लेने वाला होता है। डॉक्टर साहब मैं ठीक बोल रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। डॉक्टर कहीं बैठे हैं कहेंगे हमारी बात खुद करने लगे, पर है तो यही ना। तो सभी लाइट सवेरे जिनको बैठकर योग में नींद आती हो वो चलते फिरते करें, और जो घरों में रहने वाले हैं पीस ऑफ माइंड चलाकर करें। सवेरे बहुत अच्छे अच्छे विजन आते हैं। मैं तो आज देखा सवेरे 4 बजे मुझे याद आया कि सभी लोग कहते हैं सवेरे बहुत अच्छा आता है, मैं भी तो देख लूं। तो मैं आज खोला 4 बजे तो देखा उन्होंने 4:30 के बाद तो अव्यक्त बाबा के सीन दिखाए, बाबा की आवाज भी सुना देते हैं, अच्छी कमेंट्री आई तो आनंद आ गया। तो कुछ सहारा ले सकते हैं हम, क्योंकि हमारे योग में सफलता, योग में पावर, योग का आनंद हमारे संकल्पों के आधार पर होता है। संकल्पों को छोड़कर अगर हम योग करते हैं तो कोई निद्रा देवी की गोद में और कोई ऐसे ही टाइम बिता देते हैं थोड़े व्यर्थ में। तो पहले श्रेष्ठ संकल्पों का आनंद लेते हुए फिर संकल्पों को ऑटोमेटिकली शांत होने दें, जबरदस्ती शांत करने की आवश्यकता नहीं। सुंदर सुंदर विजन बनाकर बाबा के अच्छे अच्छे अभ्यास करके मन को आनंदित करें। सभी ये ध्यान दें, रोज सवेरे हमें अपने मन को आनंद से भरना है, श्रेष्ठ संकल्पों से भरना है, चार्ज करना है। केवल बैठ के नियम नहीं निभाना है कि भाई बाबा के रूम में बैठना है, जाके वहां प्रेजेंस डालनी है अपनी, हम तो 10 मिनट वहां बैठ के आए, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हमने वहां बैठकर क्या किया, महत्व इसका है। हमारी स्थिति कितनी एकाग्रचित हुई, महत्व इसका है। तो इस बात पर भी सभी ध्यान देंगे। फिर से आ जाए कर्मातीत स्थिति, कर्मेंद्रियों के रसों से परे। कान का रस, कईयों को बोलने का रस भी बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा बोलते हैं। मैं एक जगह था, अभी एक भाई बहुत बोलता था, उसका दूसरा भाई मुझे कहता है इसको समझा के जाओ, बहुत बोलता है, लोग तंग हो जाते हैं इसके पास बैठ के, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, मीनिंगलेस, अननेसेसरीली। तो हमें अपनी वाणी को खुद वैल्यू देना है। बाबा ने कभी वाचा पर बहुत अच्छी मुरलियां चलाई हैं, बहुत साल हो गए, रिपीट कम हुई हैं, वो 40 साल हो गए होंगे। कुछ लोगों के बोल अनमोल होते हैं, कुछ लोगों के बोल सभी सुनना चाहते हैं, कुछ लोगों के बोल को सभी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ लोगों के बोल महावाक्य बन जाते हैं, कुछ आत्माओं के बोल वरदानी बन जाते हैं। और बहुत अच्छी बात कही थी, तब हमारा यज्ञ छोटा था और हम सब मौन बहुत रखते थे। यज्ञ में एक लहर ही थी जब तक दीदी मनमोहिनी रही, मौन की लहर। तो 50 शब्दों की जगह जो आत्माएं 5 शब्दों का प्रयोग करें उन्हें वाचा की सिद्धि मिल जाती है। लेकिन कई लोग 5 शब्दों की बजाय 50 का प्रयोग कर लेते हैं तो उनकी शक्तियां, इनर पावर नष्ट हो जाती हैं। हम ध्यान देंगे इसके लिए, और जरूरी यही है कि हम अपनी वाचा को खुद महत्व दें तो हमारे एक एक बोल को सब महत्व देंगे। आज मैं याद कर रहा था एक बात, दादी ने जब शरीर छोड़ा, प्रकाशमणि दादी, याद होगा आपको बाबा ने एक बात कही थी कि लड़के रूप में ये बच्चा जहां जन्म लेगा जैसे ही बोलना सीखेगा अपने फादर को राय देने लगेगा। आज मैं सोच रहा था अभी तो 9 साल का हो गया, अब तो बहुत अच्छी राय देता होगा, है या नहीं? 9 साल का तो बच्चा बड़ा होता है ना। हम अपने बोल को खुद महत्व दें, अपने समय को महत्व दें। अंडरलाइन करें सभी, अटेंशन से, क्या हम अपने समय को महत्व दे रहे हैं? समय बहुत कीमती है और अच्छे पुरुषार्थियों को एक बात याद रखनी है, आगे चलकर ये दिन याद आया करेंगे। अव्यक्त बाबा के पाठ को देखकर हमें वो दिन याद आते हैं ना, जो पुराने हैं याद आते हैं ना, कितना आनंद लिया है सबने। प्रताप भाई आपको भी तो 40 साल हो गए, कितना आनंद लिया, कितनी गुहे बातें सुनी, कैसा माहौल होता था सभा का। तो जैसे वो दिन याद आते हैं जब बाबा अव्यक्त हुए तो साकार के दिन याद आया करते थे, अब वो पाठ पूरा हो रहा है तो ये दिन याद आया करेंगे। इसलिए अपने समय को बहुत महत्व देना है। व्यर्थ की बातों का तो विस्तार बहुत है, और जो व्यर्थ में रहते हैं वो बहुत परेशान भी रहते हैं। माताएं बहुत बैठी हैं, मैं माताओं के लिए एक बात सदा कहता हूं, क्योंकि जहां भी जाते हैं माताएं बहुत होती हैं। अभी भी हम दिल्ली एक जगह होकर आए, 3 दिन माताओं की संख्या बहुत थी। प्रोग्राम से माताएं खुश भी बहुत ज्यादा होती हैं, पर उनकी समस्याएं भी कुछ ज्यादा होती हैं। और मैं एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहता हूं, चाहे भाई हों या बहनें, समस्याएं उनके पास ज्यादा हैं जो बहुत सोचते हैं। आजकल मैं ये देख रहा हूं बहुत सारी माताएं अपने बच्चों से इसलिए दुखी हैं कि वो ज्यादा सोच रही हैं। उनको पता नहीं है हर आत्मा का अपनी अपनी योग्यताएं, अपना अपना भाग्य, अपना अपना पाठ, बुद्धि सब अलग अलग है। वो देखती हैं पड़ोसी का बच्चा कितना ऊंचा चला गया, मेरा बच्चा कुछ नहीं करता। अब ये तुलना बहुत अच्छी चीज तो नहीं है ना, इस तुलना ने बहुतों के परिवारों को अशांत किया हुआ है। कंपैरिजन, आज भी कोई हमसे मिल रहे थे, बहन छोटी आयु की कह रही थी मेरी सास मेरी तुलना मेरी ननद से बहुत करती है, बस उसको महत्व देती है, मुझे सदा नीचा दिखाती है, देख मेरी बेटी कैसी है तुम कैसी हो, सदा उसके मुख पे ये रहता है, जबकि पढ़ी लिखी ये ज्यादा है। तो घर में निगेटिव वाइब्रेशंस, अशांति का माहौल रहता है। मैंने देखा उसको बहुत देर बैठे मेरे साथ, बहुत अच्छा परिवार है, साहूकारों की लिस्ट में है, भारत के साहूकारों की लिस्ट में। मैंने पूछा रात को कितने बजे सोती है, क्योंकि उसने मुझे इसलिए बुलाया था कि रात को नींद नहीं आती, कहा 7 बजे। समझे कौन सा 7, सवेरे का, रात का नहीं। सबसे बड़ी सजा होती है ना मनुष्य के लिए। कहा सास की बात सुन सुन के मैं हर्ट होती रहती हूं। सभी ध्यान दे, जो यहां सास बैठी हैं वो अपने घरों में सुखों का माहौल बनाए, सब एक से नहीं होते। किसी की बच्ची अच्छी है, बहू थोड़ी ऐसी है, किसी की बहू बहुत अच्छी है, बच्ची में कुछ कमी है, ये सब चलता रहेगा। बड़ों का काम है मिलन करना, जो भी सास हैं उनको मिलन करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। छोटी छोटी बातों में बोलते रहते हैं कितना दहेज लाई तुम, बस एक दहेज के पीछे सारा घर अशांत। तो धन को वैल्यू देते हैं मनुष्य को नहीं। किसको वैल्यू देना चाहिए? सास बताएंगे, बैठी है ना कई सास, किसको वैल्यू देना चाहिए? मनुष्य को। सबसे ज्यादा कीमत मनुष्य की है। अगर आपके घर में एक गुणवान लड़की आ जाए, चरित्रवान, वो कुछ न लाए, उसका ज्यादा महत्व है मुकाबले इसके एक हाई फाई आ जाए, करोड़ों की संपत्ति ले आए लेकिन आपका जीना मुश्किल कर दे, सास कहे बचाओ मुझे। तो वैल्यू देंगे जीवन को, सुखदायी बनेंगे सभी, ताकि हमारे किसी व्यवहार से किसी की नींद खत्म न हो जाए। और कर्मों की गति के अनुसार जिसके व्यवहार से दूसरे की नींद खत्म होगी, उसकी भी नींद एक दिन जल्दी खत्म हो जाएगी। गोलियां काम नहीं करती। तो हम सबका ये भी परम कर्तव्य है। मैं आपको फिर से ध्यान दिलाता हूं, शाम के योग में या सवेरे के योग में लास्ट के 15 मिनट विश्व सेवा के लिए डोनेट कर दें, समर्पित कर दें सभी। संसार में मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, और इसका कारण यह है बहुतों के मन सेंसिटिव हो गए, नाजुक, सहन शक्ति नहीं रही, सब अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, सुनाना बुरा चाहते हैं, सुनना अच्छा चाहते हैं, सेंसिटिव माइंड सहन ही नहीं कर पाता कुछ, समझ रहे ना, सेंसिटिव नाजुक, जो बुरी चीजों को तुरंत ग्रहण कर लेता है उससे मन अशांत रहता है, किसी का ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा सोचने लगते हैं, फिर नींद नहीं आती है, सुख खत्म हो जाता है। एक परिवार कल ऐसा भी आया मेरे पास, हैरानी की बात होती है लोगों को देखकर क्या स्थिति पहुंच गई है मनुष्य की कलयुग के अंत में, हाईली एजुकेटेड, बहुत धनवान, कहने लगे सब बेकार लगता है, सब बेकार लगता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर मानसिक इफेक्ट, सुखी नहीं मिल रहा। हम बेचारे को आंसू आ गए, बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत सरल चित, बहुत खुश रहने वाला, लेकिन बच्चों की स्थिति के कारण सारा सुख चला गया। तो सभी का ये कर्तव्य है, परम कर्तव्य हम सबका, जिनके पास ये शक्ति है वो 15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम को विश्व सेवा में योगदान करें, विशेषकर उनको जो मानसिक रोगों से पीड़ित होते जा रहे हैं, जिनको रात को नींद नहीं आ रही है, जिनकी सुख शांति चली गई है। पसंद है? सब करेंगे, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं। खास बैठकर भी आप करें, अपने टाइम पर भी कर लें, कभी भी। विधि वही, ग्लोब के ऊपर बैठें, विजन बनाएंगे, बुद्धि बाबा से जोड़ें, उसके वाइब्रेशंस ग्रहण करें, फिर कुछ अच्छा संकल्प कर लें, जैसे मैं मास्टर दुखहर्ता हूं, मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूं, मैं सुखदाता हूं, पूर्वज हूं। अब वाइब्रेशंस फैलने लगे। अब योग से पहले ले लें, ये सरल तरीका होगा, पहले योग से ले लें, फिर बैठ जाएं लाइट हाउस बनकर, फैलने लगे हैं, सबको शांति मिले, सबके मन शक्तिशाली हो जाएं। इसलिए बहुत ध्यान देना है सबको। मैं बहुतों को ये भी एक राय देता हूं, अपने बच्चों को अब विदेश भेजने का ज्यादा क्रेज न रखें। कईयों को बहुत होता है, नाम के लिए भेजते हैं, कहेंगे हाय देखो इनका लड़का अमेरिका में है। सबसे महान भूमि भारत। मेरी इस बात को सूक्ष्म रूप से आप सब समझ लें, गलत न समझना, जिसको भेजना है वो भेजें, पर स्पिरिचुअल लैंड, सुख शांति का स्थान, जिस स्थान पे भगवान की दृष्टि है, जिस स्थान में संसार की सबसे अधिक महान आत्माएं रहती हैं वो ये हमारा देश ही है। ठीक है, थोड़ा कम मिले, सुविधाएं कम मिले, लेकिन आनंद यहीं बहुत ज्यादा है। ये मैं इस आधार पे सुना रहा हूं, कल और आज ऐसे दो लोग मेरे पास आए जिन्होंने अपने बच्चों को विदेश में भेजा और हाल इतना खराब है उनका, न वापिस आ सकते, न मर सकते, न जी सकते। अब यहां रहने वाले चिंतित, एक ने कहा 3 मास हो गए वो बात ही नहीं करते हमसे, वो कहां है कुछ पता ही नहीं, अकाउंट नंबर दिया हुआ, पैसा भी हम डालते हैं उनके अकाउंट में, माताओं को कितना भारी लगेगा, बच्चे बात भी ना करें और डांटते हैं फोन ना करना मुझे। तो भारत प्रेम से भरपूर देश है या नहीं? अब तक भी हमारे देश में जितनी प्यार की गंगा बहती है सारे संसार में मिलकर भी उतना प्यार नहीं है, भले ही बिगड़ गया खेल पर स्टिल सबसे ज्यादा प्यार हमारे देश में ही है। तो सभी इन कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त रहेंगे। मैं तो उनको हंसी में कह देता हूं, मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहा जब अपने बच्चों को भेजो ना विदेश में तो ये सोच कर भेजना कि ये वापिस नहीं आएंगे, तो भेज दो, अगर निर्मोही हो गए हो बिल्कुल तो भेज दो। तो हमें कर्मातीत होना है। अब गहरी बात पर आ जाएं, कर्म के प्रभाव से मुक्त। जो भी कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव हम पर आता ही है, कोई कर्म थकाता है, कर्म में साथियों का इफेक्ट होता है, कर्म में हमारे अपने संकल्प जो चलते हैं उनका इफेक्ट होता है। कैसे बच सकते हैं इसके इफेक्ट से? केवल एक ही चीज, अशरीरीपन। बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास करते रहें। इसको बाबा ने कभी कहा था, ये ऐसे है जैसे डॉक्टर किसी को हर घंटे ताकत का इंजेक्शन लगा दे, हर घंटे ताकत, हर घंटे में एक बार बॉडी लेस हो गए, आत्मा को एनर्जी मिल जाएगी, मन फ्रेश हो जाएगा, कर्म का जो प्रभाव पड़ रहा है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। सब्जेक्ट ये भी बहुत बड़ा है, कई लोगों को ऐसा काम होता है कि काम शुरू किया तो बाबा की याद, कुछ अच्छी स्थिति, लेकिन बीच में इतने बिजी हो गए कि सब कुछ भूल गए, कर्म के प्रभाव में पूरी तरह आ गए। तो ऐसा अपने को सेट करना है, मैनेज करें ऐसा कि बीच बीच में कुछ भी अभ्यास होता रहे। एक बहुत अच्छा अभ्यास जो अभी बाबा ने बताया था, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई, उठते ही एक विजन बनाए कि वतन में बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मेरे से बात कर रहे हैं दृष्टि देकर कि लो ये मेरी सारी शक्तियां, लो मैं तुझे तुम्हें संपूर्ण प्योरिटी का वरदान दे रहा हूं, जाओ नीचे, वो तुम्हारा शरीर, उसमें प्रवेश करो और विश्व कल्याण का कार्य करो। आ गए हम देह में, इस फीलिंग के साथ शुरुआत करें सवेरे के समय, 4 बजे भूल जाए 5 बजे करें, 6 बजे तक अवश्य कर लें। ऐसे सुंदर अभ्यास हमें कर्म के इफेक्ट से मुक्त रखेंगे। कर्म का जो परिणाम मिलता है उसका इफेक्ट मनुष्य पर बहुत होता है। कर्म हमने बहुत अच्छा किया लेकिन सफलता न मिली, निराश, बहुत मेहनत की हारते गए विजय हुई नहीं, बहुत निराश, आगे की उमंग भी खत्म। अभी भी एक माता अपने लड़के को लाई, क्रिकेट खेलता है बहुत अच्छा, कहा कई बार 0 पर आउट हो गया, बहुत निराश है, इसको जरा भरो इसमें पावर। मैंने उसको बैठाया, अभी की बात है 2-4 दिन पहले मैंने उसको बैठाया, और एक दूसरे लड़के का उदाहरण दिया, देखो रणजी ट्रॉफी में जाना चाहता था, उसका भी हाल यही हो रहा था, उसका माँ बाप ज्ञान में, वो भी लड़का ज्ञान में, उसको ये अच्छी चीजें सिखाई, फटाफट सफल हुआ, रणजी ट्रॉफी में पहुंच गया, कहा तुम भी ऐसा करो। तो जीत के बाद अहम न बढ़ जाए, हार के बाद निराशा न बढ़ जाए, सफलता के बाद इतनी खुशी न हो जाए कि असफलता पर उदासी आ जाए। सफलता पर खुशी तो सबको होगी, पर इतनी ज्यादा नहीं कि बाह्यमुखी होकर हमें असफलता को सहन करने की शक्ति से वंचित कर दे। प्रशंसा सुनी हमने, फूल गए हम बहुत। अगर बहुत फूल गए तो जब निंदा सुनेंगे बहुत डाउन हो जाएंगे। इसलिए एक सुंदर बैलेंस रखना है, और इस बैलेंस का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने छोटी आयु में श्रीमद् भगवत गीता से ये बात सीख ली थी, कर्म करो प्रभु अर्पण कर दो। मैंने किया, मैंने बहुत मेहनत की, इस भाव से ऊपर उठ जाओ, परिणाम अच्छा मिला वो भी तुमको अर्पित, और कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई वो भी तुमको अर्पित। बहुत अच्छी मनोस्थिति इससे रहेगी। इसलिए सभी इस बात पर बहुत ध्यान देंगे, ये बात बहुत गहरी है, अति गहरी। कर्म के परिणाम का इफेक्ट गहरा ना हो जाए, होगा तो थोड़ा बहुत, लेकिन जल्दी उसको मैनेज कर लें। पसंद है, कोई सेवा में आए हैं उसने बहुत सेवा की रात दिन, लेकिन जिनके साथ की उन्होंने रिजल्ट दे दिया कि इन्हें अच्छी सेवा नहीं की, तो क्या होगा? अब वो बहुत उमंग से आया है, उसको निराशा तो होगी, खुशी भी चली जाएगी, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है कि हमने सच्चे दिल से बहुत सेवा की ना, वो हमारा बाबा के पास जमा हो गया है। वो मनुष्यों के पास होने की बात ही नहीं, मनुष्य तो किसी भी कारण से, स्वार्थ से, अपने को आगे रखने के लिए कुछ बातें कर लेता है, परंतु हमारा सब कुछ बाबा के पास जमा है, उसके अकाउंट में हम हैं, उसकी दृष्टि में हम हैं, तो इससे बहुत हल्के रहेंगे। मैं आपको तीन बातें याद दिला दूं आगे के लिए, जिन पर सबको अच्छे अभ्यास करने हैं। नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। तीसरा है नो आश्चर्य, एक हिंदी शब्द एक इंग्लिश, नो आश्चर्य, नहीं समझेंगे नहीं ना माता है सब, आश्चर्य भी नहीं। ड्रामा के ज्ञान को इतना डीपली अपने अंदर उतारेंगे कि कंप्लेंट भी न रहे, जो कुछ हो रहा है, हर आत्मा जो कुछ कर रही है, जिसके साथ जो कुछ हो रहा है, उल्टा सिलता सब क्या कहेंगे, कल पहले हुआ था, हर एक के अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है। कभी देखते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत अच्छा, लेकिन इसको सताया जा रहा है, देखने वालों को भी कष्ट होता है, उसको भी परेशानी होती है, लेकिन कर्मों का इफेक्ट कुछ चल रहा है अंत में, तो कंप्लेंट भी मन में न रहे, न अपने लिए, न दूसरों के लिए, न बाबा के लिए। बाबा की भी शिकायत कर देते ना उसके बच्चे, अधिकार तो है वो, लेकिन हम रहस्यों को जानते हुए अपने चित्त को शांत करें। आश्चर्य भी नहीं, इस पर और अच्छा ध्यान देना है सभी को। आश्चर्यवत भी तो हम होते हैं ना, अरे ऐसा हो गया, ऐसा भी होता है क्या, हमने तो सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया, आश्चर्य। जो कुछ हो रहा है वही होना है, कर्म के बिना कुछ भी परिणाम किसी को नहीं मिल रहा है, और अगर हमें मिलने लगे कुछ, अगर हम ये समझें कि हमने तो कुछ नहीं किया पिछले जन्मों में भी ऐसा, फिर भी बुरा क्यों हो रहा है, तो हमें उसको सहन करने की ताकत भी रखनी है। ऐसा भी कई लोग महसूस करते हैं, हमें अननेसेसरीली सताया जा रहा है, हमारे बारे में बुरा किया जा रहा है, लेकिन हमें उसको भी फेस करने की शक्ति रखनी है। तो इम्पोर्टेंट बात लास्ट, अगर हम अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगे तो बिगड़ी हुई बातें आपे ही ठीक हो जाएंगी। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, दो बातों पर विशेष ध्यान, एकांत और स्वचिंतन। ये तीन शब्दों को बहुत अच्छी तरह अपने अनुभव में लाएंगे और अब हम अभ्यास करेंगे रिकॉर्ड बजने तक। ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है, रेड लाइट कर दें, चलें सभी एक गुड फीलिंग में। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, जिनके द्वारा माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं, और आंखों के सामने हैं ज्ञान सूर्य, सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।